तारीख 2 दिसंबर दिन सोमवार। नमस्कार, भारत के साथ मैं हूं मानसी दास। माल्टा के प्रधानमंत्री ने कहा, अगले महीने दे दूंगा इस्तीफा। सस्ती कीमतों पर अब नहीं कर सकेंगे कॉल, बढ़ने वाली हैं कॉल और इंटरनेट की दरें।
जियो जो मार्केट में आया वो इतना कैश डाल के कस्टमर्स एक्वायर कर सका, और दूसरी बात यह है कि जियो बिल्कुल नया ऑपरेटर है, इसलिए वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बिल्कुल शुरू से वो लगा सके।
साथ ही सुनेंगे गणतंत्र पर बात वुसत की डायरी के साथ।
हमने कितने अरमानों से लोकतंत्र का तस्वीर अंग्रेजों से नकल किया, पर इस लोकतंत्र को भी खालिस नहीं रहने दिया, अपने जैसा बना लिया।
होगा साप्ताहिक कार्यक्रम खेल और खिलाड़ी भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। माल्टा के प्रधानमंत्री जोसेफ मस्कट ने कहा है कि सत्ताधारी लेबर पार्टी के नए नेता के चुने जाने के बाद वो पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा है कि अगले साल 12 जनवरी के बाद इसकी औपचारिक प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पूर्वी बुर्किना फासो में एक चर्च पर बंदूकधारियों ने हमला किया है, जिसमें कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई है। निजेर की सीमा से सटे हांटूकोरा शहर के एक चर्च पर यह हमला उस वक्त हुआ जब वहां प्रार्थना सभा चल रही थी। अब तक हमलावरों की पहचान की पुष्टि नहीं की गई है। बुर्किना फासो में बीते कुछ वक्त से नस्लीय और धार्मिक हिंसा बढ़ी है। पोलैंड में सत्ताधारी लॉ एंड जस्टिस पार्टी के द्वारा न्याय व्यवस्था में लाए गए बदलावों का हजारों की संख्या में न्यायाधीश और वकील विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वाले जज पोवेल जस्टचिजेन की फिर से बहाली की मांग कर रहे हैं। जज पोवेल को इसी सप्ताह न्याय मंत्री ने पद से बर्खास्त कर दिया था। मंत्रालय का आरोप है कि जज पोवेल ने राष्ट्रपति के द्वारा की गई एक जज की बहाली का विरोध किया था। वॉर्सो में हुए विरोध प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि न्याय व्यवस्था को किसी तरह हस्तक्षेप से दूर रखा जाए। मैं जजों से ये अपील करता हूँ कि वे भयभीत ना हों, स्वतंत्र रहें और बहादुर बने रहें। हम पर्याप्त मजबूत हैं, इतने कि आपको अंदाजा भी नहीं होगा। हमें अपना काम करने दें, हमें साथ रहना है। जज पवेल के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने चेतावनी दी है कि दुनिया एक ऐसी जगह पहुंच चुकी है जहां से लौटना बेहद मुश्किल है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन के खतरों को लेकर चेतावनी देते हुए ये बात कही। मैड्रिड में इस सप्ताह जलवायु सम्मेलन होने वाला है। उसके पूर्व ही महासचिव गुटेरेश ने कहा कि मानव जाति को प्रकृति पर अपने हमले को रोकना होगा। इसके साथ ही उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति को मजबूत करने की भी बात पर जोर दिया। स्पेन की पर्यावरण मंत्री टेरेसा रिबेरा ने बीबीसी से कहा,
I think that the big challenge for all of us is to ensure that the big economies that are still silent.
मुझे लगता है कि हमारे लिए बड़ी चुनौती है कि बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों को जिम्मेदारी लेने के लिए राजी किया जाए। कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक उत्सर्जन करने वाले कुछ देश इस पर खामोश हैं, और ये सही नहीं है। इससे जलवायु परिवर्तन को रोकने की हमारी कोशिशें और मुश्किल हो जाती हैं। मुझे यकीन है कि ये देश बताएंगे कि ये विश्व के पर्यावरण की कितनी जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन मैं इनसे बेहतर जवाब सुनना चाहूंगी। स्पेन की पर्यावरण मंत्री टेरेसा रिबेरा के शब्द। इराक की संसद ने प्रधानमंत्री आदिल अब्दुल मेहदी के इस्तीफे को स्वीकार करने के बाद सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने दक्षिणी शहर नजफ में ईरान के वाणिज्य दूतावास को आग के हवाले कर दिया। बीते कुछ दिनों में नजफ में प्रदर्शनों में अधिक हिंसा और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के अधिक बल प्रयोग की खबरें आई हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इराक पर पड़ोसी ईरान का दबदबा है। इधर राजधानी बगदाद में ताज़ा हिंसा में सुरक्षा बलों के साथ हुई झड़पों में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई, जबकि कई घायल हुए हैं। इराक में बीते करीब 2 महीनों से विरोध प्रदर्शन जारी हैं। अब तक इनमें 400 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इसराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट ने अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फलस्तीन के सबसे बड़े शहर हेब्रॉन में 2 गुना यहूदी लोगों को बसाने संबंधित एक प्रस्ताव को सहमति दे दी है। फिलहाल हेब्रॉन में इजरायली सैनिकों की सुरक्षा में करीब 800 लोगों को बसाया गया है। हाल के सालों में हेब्रॉन में फलस्तीनियों और इसराइलियों के बीच कई हिंसक घटनाएं हुई हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दाश का अभिवादन। आधे घंटे का ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। माल्टा के प्रधानमंत्री ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद अपना इस्तीफा देने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन इसके बाद भी वहां प्रदर्शनकारी शांत नहीं हो रहे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पीएम तुरंत इस्तीफा दें। प्रधानमंत्री पर पत्रकार ब्लॉगर डेफने कारुआना गलिट्स के हत्यारों को सजा ना दिला पाने का आरोप है। सुनिए बीबीसी संवाददाता भूमिका राय की रिपोर्ट।
माल्टा के प्रधानमंत्री जोसेफ मस्कट ने कहा है कि सत्ताधारी लेबर पार्टी के नए नेता के चुने जाने के बाद वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा कि अगले साल 12 जनवरी के बाद इसकी औपचारिक प्रक्रिया शुरू की जाएगी। एक टेलीविजन चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में प्रधानमंत्री जोसेफ मस्कट ने कहा कि आने वाले वक्त में हम नए प्रधानमंत्री के बनने की कार्रवाई शुरू कर देंगे। आने वाले समय में हम एक प्रक्रिया शुरू कर देंगे ताकि हमारे देश में एक नया प्रधानमंत्री नियुक्त हो, ताकि नया प्रधानमंत्री सरकार को मजबूती से चला सके। मैं लेबर पार्टी के अध्यक्ष को पत्र लिखूंगा ताकि 12 जनवरी 2020 तक एक नया नेता मिल जाए। उस दिन मैं लेबर पार्टी के नेता के रूप में इस्तीफा दे दूंगा और उसके बाद मैं प्रधानमंत्री पद से भी इस्तीफा दे दूंगा। प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर हजारों की संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी वालेटा में हजारों की संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जोसेफ मस्कट के तुरंत इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 2 साल पहले हुई पत्रकार डेफने कारुआना गलिट्स की हत्या के मामले में दोषियों को सजा दिलाने में वो नाकामयाब रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल अर्नॉल्ड कसोला कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री सत्ता से प्यार करते हैं और वो इस पावर को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें जल्द से जल्द इस पद से निकाला जाना जरूरी है। इससे पहले माल्टा की गवर्निंग लेबर पार्टी के सांसदों ने मस्कट को सर्वसम्मति से अपना समर्थन दिया था। पार्टी ने वित्त मंत्री क्रिस कार्डोना को भी बहाल कर दिया था, जिनसे डेफने कारुआना गलिट्स मामले में भी पूछताछ की गई थी। हालांकि वो स्वयं इस मामले में अपने किसी भी तरह के हस्तक्षेप से इनकार कर चुके हैं। माल्टा के पत्रकार और ब्लॉगर डेफने कारुआना गलिट्स की एक कार बम धमाके में मौत हो गई थी। गलिट्स ने माल्टा के प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी पर पनामा पेपर्स से जुड़े होने के आरोप लगाए थे।
रिपोर्ट सुना रही थी भूमिका राय। देश में मौजूद दो प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ने अपने नए टैरिफ प्लान की घोषणा कर दी है। कंपनियों ने प्रीपेड कॉल और मोबाइल इंटरनेट की कीमतों में 40% तक की वृद्धि की है। 3 दिसंबर की आधी रात से नई कीमतें लागू होने वाली है। इधर रिलायंस जियो ने भी कुछ दिनों में कॉल और इंटरनेट की दरों में वृद्धि करने की बात की है। कंपनियों का कहना है कि वो घाटे में चल रही हैं। भारत के टेलीकॉम बाजार की बात करें तो कुछ वक्त पहले उपभोक्ता के लिए छोटी बड़ी कंपनियां यहां मौजूद थी, लेकिन अब इनकी संख्या सिमटकर 3-4 ही रह गई हैं। आखिर भारतीय टेलीकॉम बाजार में ये दौर आया कैसे और इन कंपनियों को अब कॉल और इंटरनेट की दरें बढ़ानी क्यों पड़ रही हैं, यही जानने के लिए बीबीसी संवाददाता नवीन नेगी ने तकनीकी मामलों के जानकार प्रशांत राय से बात की।
और कोई उपाय नहीं था, ये जो सिचुएशन जो है टेलीकॉम पे, जो ऑनगोइंग जैसे चार्जेस, उनके एक्सपेंसेस हैं, स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस हैं, ये सब मिला के इनकी जो क्वार्टरली लॉसेस जितनी हो रही थी, ये बिल्कुल सस्टेनेबली नहीं था कि ये कटते जाएं ऐसे। और ये अगर इस सिचुएशन में अगर विदाउट चेंजिंग टैरिफ वो अगर आगे ऐसे बढ़ते तो सिर्फ जियो ही रह जाता। पर ये सिचुएशन हुआ है क्योंकि 10 टेलको से लेके हम अभी 3 पे आ जाए और शायद 2 रह जाए अगर वोडाफोन भी हट जाए।
ऐसा क्या हुआ पिछले 3 साल में कि एक तरफ जियो तो आगे बढ़ता चला गया लेकिन बाकी कंपनियां कम होती गई? ऐसे क्या हालात बने इन कंपनियों के लिए कि वो बंद हो गई और अब हमारे पास जियो के अलावा सिर्फ 2 और प्राइवेट कंपनियां रह गई हैं हमारे सामने और वो भी नुकसान में है?
क्योंकि जियो ने काफी खर्चा किया कस्टमर एक्विजिशन में। जियो काफी कैश रिच था, रिलायंस की पूरी जो कैश है जो कस्टमर एक्विजिशन में लगाया है, क्योंकि टेलीकॉम यहाँ पे काफी महंगा बिजनेस है। यहाँ पे स्पेक्ट्रम की कॉस्ट है, स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस हैं, फिर नेटवर्क सेटअप कॉस्ट है, और इंडिया की जो सबसे बड़ी बात है कि इंडिया की जो हम टेलीकॉम में एवरेज रेवेन्यू पर यूजर कहते हैं, मतलब कि हर महीने में एक ग्राहक का बिल कितना होता है, वो लगभग 100 रुपये, 120-130 रुपये, मतलब दुनिया से सबसे कम मंथली बिलिंग है। तो ये बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है कि इस मंथली बिलिंग में, मतलब ये अगर लगभग 200-250 या 300 होता तब ये नेटवर्क या ऑपरेटर सस्टेनेबल रहते।
क्या हम ये कह सकते हैं कि जो बाकी कंपनियां थी जियो को छोड़ के, वो भारत के बाजार को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाई कि भारत का जो ग्राहक है उसे क्या चाहिए और कितने रेट के उसको टैरिफ चाहिए, उनको समझने में कहीं गलती कर गए?
नहीं, मैं ये नहीं मानूंगा कि वो समझने में गलती कर गए, वो भी काफी देर से, काफी सालों से इंडियन मार्केट में है, पर ये कम्पीट नहीं कर पाए। इतना एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर जियो जो मार्केट में आया, वो इतना कैश डाल के कस्टमर्स एक्वायर कर सका। और दूसरी बात यह है कि जियो बिल्कुल नया ऑपरेटर है, इसलिए वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बिल्कुल शुरू से वो लगा सके, और इनके पास पुरानी लेगेसी जो 2G 3G की टेक्नोलॉजी थी वो अपग्रेड करने में इतना खर्चा हो रहा था। तो ये नेटवर्क कॉस्ट जियो ने जो वन टाइम सेटअप किया वो सीधा 4G पे गया, और कोई वॉइस का अलग सिस्टम ही नहीं लगाया, 4G LTE पे पूरा ये टेक्नोलॉजी पे लगाया।
कस्टमर्स के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो इतने महंगे टैरिफ से किस तरह से बचें और कौन से प्लान्स को ज्यादा यूज करें जिससे उनको ज्यादा बिल उनका ज्यादा ना बढ़े?
मैं ये कहूंगा कि अगर डेटा, जैसे सबसे ज्यादा अभी यूजेज डेटा में हो रही है, और डेटा की जो जैसे वीडियोज देखते हैं लोग, तो शायद वो थोड़ा उनका यूजर बिहेवियर थोड़ा एडजस्ट करना होगा। जैसे अभी काफी लोग जियो के स्पेशली जो कस्टमर्स हैं वो 4G पे वीडियोस देखते हैं, तो वो शायद थोड़ा एडजस्ट करके, वो जैसे आजकल ये चीज भी हो रहा है कि फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट्स और ये सब आने लगे हैं, और ये इंडिया लगभग 10-15 साल लेट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि बाहर की मार्केट में सभी जगह फ्री वाईफाई 15 साल पहले आ गया। तो मैं यही कहूंगा कि डेटा का कॉस्ट किसी का बढ़ रहा है तो वो देख के उसको कैसे एडजस्ट कर सके कि जितना पॉसिबल हो फ्री वाईफाई यूज करें और 4G का थोड़ा कम करें।
जल्द बढ़ने वाली हैं कॉल और इंटरनेट की दरें, विश्लेषण कर रहे थे प्रशांत रॉय। झारखंड में 5 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनावों में पहले चरण के मतदान के बाद अब दूसरे चरण की तैयारी हो रही है। दूसरे चरण में 7 दिसंबर को वोट डाले जाने हैं। झारखंड में इस बार सत्तारूढ़ बीजेपी अकेले मैदान में है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल जो हैं वो गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। इस गठबंधन में एक अहम दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा। बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गठबंधन के बारे में खास बातचीत की, आप भी सुनिए।
कांग्रेस, आरजेडी?
जे मैम,
जेवीएम नहीं है।
हाँ, इस मामले में जो लोकसभा में तय हुआ था उनमें से एक मिसिंग है, क्योंकि राजनीतिक दल है उनकी, उनका भी अपना एक विचार सोच है, उन्होंने निर्णय लिया है अपने तरीके से और स्वतंत्र है।
लेकिन ये दौर मिसिंग का बहुत नहीं चल रहा है, कोई कई विधायक मिसिंग हो जा रहा है, कुछ बीजेपी के मिसिंग हो जा रहे हैं, कुछ आजसू के, कुछ जेवीएम के,
कुछ जेएमएम के भी,
जेएमएम के भी, आपके तो दो ही गए मेरे ख्याल से।
हाँ,
तो ये जो पॉलिटिक्स है ये क्या है, क्यों भगदड़ मची पड़ी है चारों तरफ?
देखिए, भगदड़ मची पड़ी नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल जो कुछ शॉप है यहाँ कुछ ज्यादा है और मार्केटिंग हो रही है, पॉलिटिकल मार्केटिंग चल रही है, और अधिकतर कई नेता, कई लोग चुनाव लड़ने का इच्छुक रखते हैं, सो उनकी वजह से वो दुकानें भी चल पड़ती हैं।
दुकानें चल पड़ती हैं कह रहे हैं, लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूँ इसी बीच में कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे हमेशा एक राजनीतिक अस्थिरता रही है, किसी भी दल को अकेले पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता, 81 सीटें हैं यहाँ की। क्या यही वजह है कि जिसकी वजह से ये जो आप मार्केटिंग कह रहे हैं और खरीद फरोख्त वाला, क्या इस वजह से ज्यादा होता है?
ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, भाजपा ने इस परंपरा की शुरुआत की है और इस परंपरा की अंत करने की मैं कोशिश पर हूँ।
हेमंत जी, क्या मुद्दे हैं, आप मुख्यमंत्री रहे यहाँ पर, और ये जो इलेक्शन है ये पिछले इलेक्शन से कैसे डिफरेंट आप देखते हैं?
सबसे बड़ा इशू तो हमारा यहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रघुवर दास जी हैं, वही बड़े सबसे बड़े इशू हैं कि 5 साल में चूंकि उन्होंने ही राज्य को चलाया है, उनके गठबंधन सहयोगी आजसू दोनों ने मिलकर चलाया है, कुछ घटनाएं ऐसी हुई है इस राज्य में कि उन घटनाओं से इस राज्य के लोगों का सर शर्म से झुकता है और यहाँ भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त बोलने वाली डबल इंजन की सरकार,
ये डबल इंजन में नहीं समझ पाया।
ये भाजपा से ही ये अस्पष्ट होगा, ये डबल इंजन की जो सरकार है, एक दिल्ली में है, एक यहाँ पर है, लेकिन मुझे लगता है कि डबल इंजन के बीच में ये पब्लिक कहाँ है, ये नहीं उनसे भी पता चल रहा है और ना हमें भी दिख रहा है।
अब आपको मिसाल के तौर पे पथलगड़ी का जो मूवमेंट हुआ है, किसी राजनीतिक दल ने जाकर एक स्टैंड नहीं लिया,
क्या बात करते हैं। जो लड़ाई हमारे दल ने किया है, ये लड़ाई अभी हमारी समाप्त नहीं हुई है, वो जंग जारी है। आज सीएनटी एसपीटी के विषय पर किसने सबसे अधिक मुखर होकर सड़कों पर उतरने का काम किया? आज अगर वो सीएनटी एसपीटी एक्ट में जो फेरबदल नहीं हो पाई, तो उस भूमिका में, सबसे प्रखर भूमिका में झारखंड मुक्ति मोर्चा रहा है।
तो बताइए क्या भविष्य देखते हैं फिर झारखंड का, क्या कहां जाएगा झारखंड?
देखिए, नेतृत्व करने वाला इस राज पे हो तब ना, यह नेतृत्व थोड़ी यहाँ बतौर मुख्यमंत्री किया जा रहा है, ये तो एक रबर स्टाम्प के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं। अगर कोई सोच, कोई विजन होता तो मुझे लगता है राज का चेहरा आज के दिन में कुछ और होता, लेकिन 5 सालों में जिस तरीके से रघुवर जी का शासन रहा, मुझे लगता है कि ये वर्स्ट सरकार पूरे 19 सालों की है। हालांकि बीजेपी की भी सरकार रही है इससे पहले, लेकिन ये पूरे 19 सालों का वर्स्ट व्यवस्था रहा और इन्होंने बड़ी बुरी तरीके से राज को परेशान किया।
आपने घोषणा की कि 5 लाख रोजगार सृजित होंगे और बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, लेकिन जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जीडीपी की आप बात कर रहे हैं स्टेट की, कैसे मैनेज कर पाएंगे अगर आपकी सरकार बनी?
एक बार आने तो दीजिए, फिर देखिएगा। सिर्फ एक कंपोनेंट में हाथ लगेगा तो जो चीजें हमने पब्लिकली कहा है उसका 50% समस्या का समाधान हो जाएगा।
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात कर रहे थे बीबीसी संवाददाता सलमान रावी। दशकों से कई छात्र आंदोलनों के गवाह रहे बिहार में उच्च शिक्षा की हालत आज दयनीय है और इसका खामियाजा भुगत रहे हैं छात्र। यहां के लाखों नौजवानों के करियर का महत्वपूर्ण वक्त विश्वविद्यालयों के सेशन देरी से शुरू और खत्म होने के कारण बर्बाद हो रहा है, लेकिन जहां दुनिया के कई हिस्सों में छात्र अपने हकों की लड़ाई के लिए आवाज उठा रहे हैं, वहीं बिहार के छात्र इस पर खामोश हैं। सुनिए बिहार से नीरज प्रियदर्शी की रिपोर्ट।
2015 में एमएससी मैथ्स के कोर्स में दाखिला लेने वाले मधेपुरा के अजीत कुमार आज तक अपनी डिग्री पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। 2015 में ही जेडी विमेंस कॉलेज में बीबीए की पढ़ाई शुरू करने वाली स्वीटी के फाइनल ईयर के इम्तिहान अभी तक चल रहे हैं। 2016-19 के बैच की इकोनॉमिक्स ऑनर्स की स्टूडेंट मीसा भारती के चौथे सेमेस्टर की परीक्षा अभी अभी खत्म हुई है। अजीत, स्वीटी और मीसा के बीच जो बात कॉमन है वो ये कि तीनों बच्चे बिहार में ही पढ़ रहे हैं। केवल यही नहीं, इनके जैसे यहाँ लाखों युवा हैं जिनकी 3 साल की पढ़ाई 5 साल में हो रही है और 2 साल का कोर्स करने में 4 साल लग जा रहे हैं। मगध विश्वविद्यालय की छात्रा स्वीटी कहती हैं,
2020 में हम लोग का फाइनल होने वाला था तो ये थर्ड ईयर का सेशन टच कर गया और अभी सेकेंड ईयर का एग्जाम्स हो रहा है और अभी कॉलेज में हमें थर्ड ईयर की क्लासेस भी प्रोवाइड नहीं की है।
पिछले दिनों जब नए कुलाधिपति सह राज्यपाल फागू चौहान ने पद संभाला था, तब राजभवन में हुई समीक्षा बैठक में पाया गया था कि 12 में से 6 विश्वविद्यालय लेट लतीफी के शिकार हैं। बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में स्नातक की 3 और स्नातकोत्तर की 7 परीक्षाएं लंबित हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी में स्नातक की 4 और स्नातकोत्तर की 1 परीक्षा बाकी है। जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा में भी स्नातक की 2 तथा स्नातकोत्तर की 6 परीक्षाएं नहीं हुई हैं। मगध यूनिवर्सिटी में भी हाल ऐसा ही है। तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर से लेकर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा तक सभी की हालत कमोबेश एक जैसी है। आखिर बिहार के विश्वविद्यालयों के सेशन लेट क्यों हो जाते हैं? वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा के वाइस चांसलर देवी प्रसाद तिवारी कहते हैं,
इसका कारण देखिए ये है कि अभी तक जो समझ नहीं आया, वो ज्यादातर लड़के क्लास आते नहीं, एक बार नाम लिखा लिया इसके बाद वो डिफरेंट जगह पे कोई सर्विस करने या कहीं मगर जॉब में चले जाते हैं। फिर जब फॉर्म भरा जाएगा तो वो बार बार डेट बढ़वाते हैं, जब इम्तहान होगा तो बार बार डेट बढ़वाएंगे, तो टाइम से इम्तहान हो ही नहीं पाता।
बिहार के विश्वविद्यालयों में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की भारी कमी है, यह बात नैक की रिपोर्ट में भी आ चुकी है। नए राज्यपाल फागू चौहान ने कुलपतियों के साथ अपनी पिछली मीटिंग में सेशन सुधारने के लिए दिसंबर 2020 तक की डेडलाइन तय की है, मगर सच ये भी है कि ऐसी डेडलाइन पहली बार तय नहीं हुई है। इसके पहले भी कई दफ़े कई राज्यपालों ने अपने अपने स्तर से सेशन सुधारने की कोशिशें की हैं। वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकुर, ऐसी स्थिति पर विरोध में आवाजें नहीं उठने की जिम्मेदारी यहाँ के छात्र संघों की मानते हैं।
सबसे ज्यादा यहाँ जातियों में बटे हुए हैं ये छात्र समूह। जातिवाद का जो जहर राजनीतिक क्षेत्र में जिस तरह से फैला हुआ है वो वहाँ भी दिखता है। छात्र राजनीति जो है वो भी जातीय चपेट में होती है।
1974 के छात्र आंदोलन के लहर की हवा जिस बिहार से उठी थी वहाँ शिक्षा की इस दयनीय स्थिति पर इतनी खामोशी और भी कई बड़े सवाल खड़े करती है। नीरज प्रियदर्शी, BBC पटना।
और अब आगे बढ़े उससे पहले जानते हैं कि दिल्ली से छपने वाले अखबारों में आज क्या कुछ खास है। अखबारों के साथ स्टूडियो में भूमिका राय हैं।
मानसी, कल बजाज ग्रुप के जो चेयरमैन है राहुल बजाज, उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम था जिसमें अमित शाह से उन्होंने बोला कि डर का माहौल है, उन्होंने ऐसी बात कही, जिसके जवाब में अमित शाह ने उन्हें जवाब भी दिया उनकी टिप्पणी पर। लेकिन इस बात के बाद बीजेपी के कई बड़े नेता और जो कई केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने उनके भी जवाब आए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई माहौल नहीं, किसी ने इस तरीके की बातों को एकदम इनकार किया है। किसी ने बोला है कि आपका इस तरीके से खुल करके सवाल पूछना ही ये बताता है कि लोकतंत्र है। तो एक ये बड़ी बात थी और ये कल दिन भर चर्चा का विषय रहा। इसके अलावा महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हिंदुत्व की विचारधारा ना उन्होंने पहले छोड़ी थी, ना अब छोड़े हैं और ना कभी छोड़ेंगे। और ये कहते हुए उन्होंने देवेंद्र फडणवीस जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन पर तंज भी कसा क्योंकि हिंदुत्व की बात हमेशा से चलती रही शिवसेना और जिस तरीके से NCP और कांग्रेस के साथ आई इस तरीके की बातें उठती रही हैं। और हम पहले ही खबर सुना चुके हैं कि उपभोक्ताओं के लिए अब सस्ती कॉल दर और जो डेटा है उसका दौर खत्म हो सकता है। इसके अलावा तमिलनाडु से एक खबर है कि तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए DMK की जो रणनीति है उसमें प्रशांत किशोर अहम भूमिका निभा सकते हैं।
और आज या कल उनकी जो मीटिंग है वो MK स्टालिन से भी होने वाली है।
बिल्कुल। और महेंद्र, एक छोटी सी खबर और दे दूं कि महेंद्र सिंह धोनी कब संन्यास लेंगे इसका फैसला वो खुद करेंगे, बोर्ड इस पे कुछ भी नहीं कहेगा।
ये कहा है सौरभ गांगुली ने। अखबारों की विस्तृत समीक्षा के लिए धन्यवाद भूमिका। और अब वक्त है वसतुल्ला खान की डायरी का। इस बार का विषय है भारत और पाकिस्तान का गणतंत्र और गणतंत्र में राजनीति।
कोई भी राजनीतिक गुट भले कहीं का भी हो, कितना ही पुराना या नया हो, धार्मिक हो के सेकुलर, बायां हो या दायां, उत्तरी हो के दक्षिणी, वो तब तक आदर्शी रहता है जब तक सत्ता का खून उसके मुंह को न लगे। सत्ता के अपने नियम और उसूल होते हैं। सत्ता दरअसल रोम की तरह होती है और डू इन रोम एज रोमन्स डू, यानी रोम में वही करो जो हर रोमवासी करता है। जब यही राजनीतिक गुट सत्ता से बाहर कर दिया जाता है तो फौरन आदर्श, उसूल और नजरिया की बुक्कल फिर से मार लेता है। इसे आप मौका परस्ती कह लें कि तोता चश्मी के कलाबाजी के नजरिए से बेवफाई, मगर राजनीति यही थी, है और रहेगी। पसंद नहीं तो जंगल में कुटिया बना लें, भले साधु संत बन जाएं, राजनीति यही रहेगी। अब यही देखिए कि अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्टों ने अपने अपने हिसाब से आज़ादी के लिए क्या क्या संघर्ष नहीं किया ताकि उपमहाद्वीप के लोग अपनी किस्मत खुद तय कर सकें। फिर हुआ क्या? आज भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जिन कानूनों के जरिए लोगों की आज़ादी छीनी जाती है या उन पर रोक लगाई जाती है वो सब के सब अंग्रेज़ों से विरासत में मिले। ब्रिटेन ने तो उन्हें कब का त्याग दिया, पर हमारा शासन इन कानूनों को अम्मा के दहेज में आए लोटे की तरह सीने से लगाए बैठा है। पहले गोरा इन कानूनों के जरिए कालों को दबाता था, आज काला इसी गोरे कानून के जरिए दूसरे काले को दबा रहा है। ऐसा नहीं कि आज़ादी के बाद बदलाव नहीं आया। ब्रिटिश इंडियन पीनल कोड को आज़ादी के बाद इंडियन या पाकिस्तानी पीनल कोड पुकारा जाने लगा। क्या ये कम बदलाव है? हमने कितने अरमानों से लोकतंत्र का तस्वुर अंग्रेज़ों से नकल किया, पर इस लोकतंत्र को भी खालिस नहीं रहने दिया, अपने जैसा बना लिया। यानी सत्ता हासिल करने या बने रहने के लिए ज़रूरत हो तो गधे को भी बाप बना लो और ज़रूरत हो तो बाप को भी गधा बना दो। जनता का बस एक ही काम रह गया है, जब कहा जाए वोट डालो तो वोट डाल दो। इसके बाद भारत में कम्युनिस्ट और जनसंघ एक दूसरे से इत्तेहाद कर लें कि मायावती और बीजेपी में गाड़ी छने के फिर बीजेपी के मुकाबले में एसपी बीएसपी गठबंधन हो जाए कि मोदी के खिलाफ शिवसेना और कांग्रेस मिलके महाराष्ट्र में हुकूमत बनाए, या फिर पाकिस्तान बनने की विरोधी और औरत की हुक्मरानी को गैर इस्लामी बताने वाली जमात इस्लामी जनरल अयूब खान के खिलाफ जिना साहब की बहन मोहतरमा फातिमा जिना का साथ दे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो फातिमा जिना के खिलाफ अयूब खान का चुनाव अभियान चलाएं और फिर यही भुट्टो अयूब खान के खिलाफ हो जाएं और वही जमात इस्लामी जनरल यहिया खान के फौजी शासन की समर्थक हो जाए और इमरान खान सत्ता में आने से पहले हर सेनापति की मुलाजमत में एक्सटेंशन के खिलाफ हों और सत्ता में आ जाएं तो जनरल बाजवा की मुलाजमत में एक्सटेंशन के लिए सारे घोड़े खोल दें। पर क्या करें, राजनीति का कोठा ऐसे ही चलता है, भले पूरब हो के पश्चिम, इंडिया हो के पाकिस्तान, के पापुआ न्यू गिनी, सब गंदा है पर धंधा है ये।
वो सत की डायरी आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। और अब वक्त है साप्ताहिक कार्यक्रम खेल और खिलाड़ी का।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। लखनऊ में समाप्त हुए सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में कल भारत के सौरभ वर्मा 8वीं वरीयता हासिल चीन ताइपे के वांगजू वेई से फाइनल में हार गए। महिला वर्ग में चौथी वरीयता हासिल स्पेन की कैरोलिना मारिन ने थाईलैंड की पित्यापोर्न चाइवान को बेहद आसानी से हराकर खिताब अपने नाम किया।
मेक और ब्रेक मैच था पाकिस्तान के लिए, मगर बाउंसर से भाग गई ये टीम। मासवा बाबर आजम के हर किसी ने शॉर्ट लेंथ के लिए वेट किया और टेक्निक का बेड़ा गर्क हो गया और आखिरी 40 मिनट में जहां दिल गुर्दे के साथ लड़ना था पिंक बॉल के खिलाफ, टाक के खिलाफ, वहां पे मिडल ऑर्डर फुटवर्क तितर बितर हो गया। बाउंसर से भाग के इन्होंने प्लेट में विकेट्स दे दी ऑस्ट्रेलिया को।
ये नाराजगी भरे शब्द हैं पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज रमीज राजा के, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में खेले जा रहे दूसरे डे नाइट टेस्ट मैच के गवाह हैं। हालांकि उनकी बात का असर कल तीसरे दिन तब देखने को मिला जब पहले तो बाबर आजम के 97 रनों के बाद यासिर शाह ने 113 रनों की शतकीय पारी खेली और एक समय 89 रन पर 6 विकेट खोने वाली पाकिस्तान ने अपनी पहली पारी में 302 रन बनाए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी 3 विकेट पर 589 रन बनाकर समाप्त घोषित की। पहली पारी के आधार पर पाकिस्तान 287 रन से पिछड़ा और फॉलो ऑन को मजबूर हुआ, लेकिन दूसरी पारी में भी उसके 3 विकेट केवल 39 रन पर गिर गए। पारी की हार से बचने के लिए अभी भी पाकिस्तान को 248 रनों की जरूरत है। और अब समीक्षा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक का टिकट तो हासिल किया, लेकिन क्या पदक भी जीत पाएगी? दुनिया में भारत के अलावा शायद ही कोई ऐसी टीम हो जिसने ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीते हों और उसके बाद उसकी हालत ऐसी हो कि आज वो ना तो एशियन, ना राष्ट्रमंडल और ना ही विश्व चैंपियन हो। साल 1964 में टोक्यो में ही हुए ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के अहम खिलाड़ी रहे गुरबख्श सिंह कहते हैं,
चार टीमें ए से और चार टीमें पूल डी से क्वार्टर फाइनल खेलेगी और उसके बाद में नॉकआउट है, तो मेरे हिसाब से पूल बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हम दूसरे पूल में होते तो उस पूल में भी हमको बेल्जियम, हॉलैंड या जर्मनी, ये तीन टीमें मिलती।
पूल की चार टॉप टीमें क्वार्टर फाइनल खेलेंगी और इससे आगे का रास्ता मुश्किल मानते हैं साल 1975 में विश्व कप जीतने वाली टीम के सदस्य और पूर्व ओलंपियन रहे असलम शेर खान।
जापान से हम लोग ऊपर हो सकते हैं, अपसेट कर सकते हैं स्पेन को या न्यूजीलैंड को, लेकिन अभी उस लग्गे की हॉकी बनी नहीं पाई पूल क्वालिफाई कर पाएगी।
आखिरी मिनट में गोल खाना भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है। भारत को लगातार बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी भी मिल रही है, लेकिन घरेलू स्तर पर हाल ये है कि बहुत से टूर्नामेंट बंद हो गए तो बहुत से डिपार्टमेंट जो खिलाड़ियों को नौकरी देते थे वो घाटे में चल रहे हैं। बीते सुहाने दिनों की यादों के सहारे जिंदा भारतीय हॉकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दम तोड़ रही है।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
कार्यक्रम में आपसे विदा लें उससे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर भूमिका राय से।
बीबीसी समाचार। माल्टा के प्रधानमंत्री जोसेफ मस्कट ने कहा है कि सत्ताधारी लेबर पार्टी के नए नेता चुने जाने के बाद वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। पूर्वी बुर्किना फासो में एक चर्च पर बंदूकधारियों ने हमला किया जिसमें कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई है। पोलैंड में सत्ताधारी लॉ एंड जस्टिस पार्टी के द्वारा न्याय व्यवस्था में लाए गए बदलावों का हजारों की संख्या में न्यायाधीश और वकील विरोध कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने चेतावनी दी है कि दुनिया एक ऐसी जगह पहुंच चुकी है जहां से लौटना बेहद मुश्किल है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन के खतरों को लेकर ये चेतावनी दी। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला शाकिर आलम ने। अगला प्रसारण दिन भर आज शाम, तब तक देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए BBCHindi.com के साथ। फिलहाल मानसी राज समेत पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।